ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुदूर पश्चिम में पिछले 24 घंटे में 625 मिलीमीटर हुई बारिश। बाढ़ की चपेट में कंचनपुर में 4 लोगों की हुई मौत। 2000 से अधिक घर डुबान में। प्रतिनिधि सभा से निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक बहुमत से हुआ पारित। नेकपा एमाले ने बागमती सरकार से अपना समर्थन लिया वापस। सहकारी समस्या समाधान के लिए बचतकर्ताओं की रकम चरणबद्ध रूप में वापस करने की योजना बनाने का राष्ट्र बैंक ने दिया सुझाव। और यूक्रेन में रूस के ताजा हमले में 31 लोगों की मौत। एक बाल अस्पताल भी आया हमले की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में मॉनसून शुरू होने के बाद विभिन्न स्थानों में आई बाढ़ भूस्खलन लगायत की घटनाओं में आज दोपहर तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 88 लोग घायल हुए हैं। आपदा जैसी घटनाओं में काठमांडू घाटी में 1, कोशी प्रदेश में 18, मध्य प्रदेश में 3, बागमती प्रदेश में 4, गंडकी प्रदेश में 22, लुम्बिनी प्रदेश में 18, कर्णाली प्रदेश में 4 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 4 को मिलाकर कुल 74 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता डीआईजी दान बहादुर कार्की ने दी। इसी तरह कोशी प्रदेश में 41 और गंडकी प्रदेश में 12 सहित 53 लोगों का उद्धार किया गया है। बता दें कि बाढ़ व भूस्खलन में कोशी प्रदेश में 2, बागमती में 2 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 1 सहित कुल 5 लोग लापता हुए हैं। पुलिस के अनुसार लापता लोगों की तलाश जारी है। बाढ़ के कारण देश में 2000 से अधिक घर डुबान में हैं, वहीं 4000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। 4 दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण कंचनपुर जिले में बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति हुई है। बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण कंचनपुर के पुनर्वास में 3 किशोरियों और कृष्णपुर में 1 शिशु की मौत हो गई। कंचनपुर के वेदकोट स्थित सूडा में कलवर्ट ढहने से बीती रात से अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग डायवर्जन की व्यवस्था करने के बाद आंशिक रूप में संचालित किया गया है। कंचनपुर के दोधारा चांदनी, भीमदत्त, बेलडांडी, बेलौरी, लालझाड़ी और पुनर्वास क्षेत्र बाढ़ के कारण अधिक प्रभावित हैं। कंचनपुर पुलिस के मुताबिक जिले में 4000 से अधिक व्यक्ति विस्थापित हो चुके हैं। उनमें से कुछ घर लौट पाए हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मवेशी समेत अन्य क्षतियों का विवरण आना अभी बाकी है। सुखद बात यह है कि आज दोपहर से वहां बारिश थमी हुई है। पिछले 4 दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण कंचनपुर में करीब 2000 से अधिक घर डुबान में हैं। लगातार की बारिश के बाद महाकाली नदी में जलस्तर बढ़ने से भुजिला नदी होते हुए महाकाली का पानी गांव में घुस गया, जिसके कारण तटीय बस्ती डुबान में है। बाढ़ से पूर्व पश्चिम राजमार्ग की भाषी सूडा सड़क खंड में पुल और सड़क कटान के कारण आवागमन तक अवरुद्ध हो चुका है। बता दें कि कंचनपुर, कैलारी, डडेलधुरा समेत समग्र सुदूर पश्चिम में पिछले 24 घंटे में 625 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विद राजू प्रधानंग के मुताबिक इस बार कंचनपुर में अस्वाभाविक बारिश हुई है। बाढ़ की चपेट में कैलाली और कंचनपुर में 2 लोग लापता हो गए हैं। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढ़ी से मिली जानकारी के मुताबिक कैलाली की कैलाली गांव पालिका वार्ड नंबर 9 गदरिया गांव की भुर्रा नदी में डूबकर 18 वर्षीय अजय राणा लापता हो गए। दूसरी तरफ कंचनपुर की बेलडांडी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के 23 वर्षीय डम्बर चौधरी पास की चौदर नदी में डूबकर लापता हो गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक का प्रमाणीकरण किया। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेग्मी द्वारा जारी किए गए बयान में ये जानकारी साझा की गई है। बयान में कहा गया है कि दोनों सदनों से पारित होकर एक विधेयक का राष्ट्रपति पौडेल ने आज प्रमाणीकरण किया। बता दें कि आज ही प्रतिनिधि सभा ने लगाने सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाले विधेयक को बहुमत से पारित किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2081 को बहुमत से पारित किया। बैठक में सरकार की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने विधेयक के संबंध में राष्ट्रीय सभा से हुए संशोधन पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की ओर से संचार मंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय समावेशी आयोग का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 सभा में पेश किया। इससे पूर्व बैठक के विशेष समय में नेकपा एमाले के सचेतक महेश बर्तौला ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए अब प्रधानमंत्री को लंबा समय न लेकर मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए। वहीं नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता पूर्ण बहादुर खर्ती ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच होने जा रहे सहकार्य से ये आशंका उत्पन्न हुई है कि कहीं ये देश को दो पार्टी पद्धति में ले जाने की फिराक में तो नहीं है। इसी तरह विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने वर्तमान आपदा और समसामयिक राजनीतिक मामले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। नेकपा एमाले ने बागमती प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दल के नेता एवं आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री जगन्नाथ थपलिया सहित मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शालिकराम जमकट्टेल के समक्ष अपना इस्तीफा पेश किया। एमाले की सरकार से बाहर होने के साथ ही अब बागमती प्रदेश सरकार अल्पमत में पड़ चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र में एमाले और कांग्रेस के बीच हुई सहमति के अनुसार एमाले ने प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने समस्याग्रस्त सहकारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए चरणबद्ध रूप में बचतकर्ताओं को रकम वापस देने की योजना बनाने का सुझाव दिया है। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में गठित संसदीय छानबीन विशेष समिति की आज हुई बैठक में गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी ने योजना प्रस्तुत की थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सूचना प्रविधि एक ऐसा क्षेत्र है जहां नेपाल दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, इसलिए देश का ध्यान इस पर केंद्रित करने का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विज्ञों से विचार विमर्श के दौरान संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि अब सूचना प्रविधि क्षेत्र को अधिक सक्रिय बनाने में मदद के लिए नीतियां, कानून और कार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई संबंधी नीति बनाने के लिए अवधारणा पत्र तैयार किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
ए, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बारिश के कारण कर्णाली राजमार्ग 4 दिनों से अवरुद्ध है। कालीकोट की शुभकालिका गांवपालिका वार्ड नंबर 1 गगनी नदी का भूस्खलन अभी तक नहीं हटाया जा सका है। इसी तरह कर्णाली राजमार्ग की एस मोड़, हुलम बाजार, सेरीघाट, खाड़ा चक नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के छेका, वार्ड नंबर 6 की मुल्फा बाजार और तिला गुफा नगर पालिका 6 के टिमुरे की पहाड़ी से आए भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट के सूचना अधिकारी इंस्पेक्टर पोषण थापा ने दी। भूस्खलन के जोखिम में रहे स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने का अनुरोध किया गया है। लगातार बारिश के कारण कर्णाली प्रदेश के हिमालयी जिलों डोलपा, मुगु, जुमला और हुमला में हवाई सेवाएं 5 दिनों से अवरुद्ध हैं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट शाखा प्रमुख महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि आषाढ़ 19 गति के बाद से कर्णाली के 4 हिमालयी जिलों में हवाई सेवा अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि तारा, सीता और समिट एयर के विमान नेपालगंज से 4 हिमालयी जिलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थीं, लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई सेवाएं बाधित हो गईं। हवाई सेवा बंद होने के बाद जो पर्यटक मानसरोवर कैलाश के दर्शन कर लौटने की तैयारी में थे, वे चीन के तकलाकोट से तिब्बत के रास्ते केरुंग होते हुए काठमांडू लौटे हैं। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन आने से काली गंडकी कॉरिडोर का बागलों खंड 3 दिनों से बंद है। कॉरिडोर की 4 जगहों पर भूस्खलन आने से अब तक यातायात संचालन में नहीं लाया जा सका है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी विजय यादव ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। अकेले राजधानी कीव में 17 लोग मारे गए हैं। इन 17 मौतों में से 2 की मौत बच्चों के एक अस्पताल में हुई। 11 मौतें निप्रो पेत्रोवस्क में किए गए हवाई हमलों में हुई हैं। बाकी लोग कहां मारे गए, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। रूसी हमले की जद में उहमेतिद्यत अस्पताल भी आया है। हमले के वक्त अस्पताल के बच्चों के वार्ड में 20 बच्चों का इलाज चल रहा था। बच्चों के अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारी नुकसान को देखा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पोलैंड के दौरे पर हैं, जहां उनके सुरक्षा समझौतों पर दस्तखत करने की संभावनाएं हैं। जेलेंस्की ने कहा कि कीव और स्तोवियास्क समेत कई शहरों में अलग अलग 40 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। इन हमलों में रिहायशी इमारतें, भवन और बच्चों के अस्पतालों को नुकसान हुआ है। पूरे कीव शहर में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोग अस्पताल के मलबे के नीचे फंसे हुए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुदूर पश्चिम में पिछले 24 घंटे में 625 मिलीमीटर हुई बारिश। बाढ़ की चपेट में कंचनपुर में 4 लोगों की हुई मौत। 2000 से अधिक घर डुबान में। प्रतिनिधि सभा से निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक बहुमत से हुआ पारित। नेकपा एमएलए ने बागमती सरकार से अपना समर्थन लिया वापस। सहकारी समस्या समाधान के लिए बचतकर्ताओं की रकम चरणबद्ध रूप में वापस करने की योजना बनाने का राष्ट्र बैंक ने दिया सुझाव। और यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों में 31 लोगों की मौत। एक बाल अस्पताल भी आया हमले की चपेट में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।